आत्मभावना लेक्चर नंबर 14। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम शुद्धात्मने
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आययाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सौवसाऊणं। येनात्मा बोध्यतात्मैव परत्वे नैव चापरम्, अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। यह आत्मभावना नामक शास्त्र है जो कांजी स्वामी के जो समाधि तंत्र के ऊपर के प्रवचनों का संकलन है। अभी हम समाधि तंत्र में इसे देख रहे हैं। 14 नंबर है। समाधि तंत्र की 7वीं नंबर की गाथा हमने पढ़ी थी, उसका अन्वयार्थ भी देखा था। अब इसमें केवल गुजराती अंश पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे अन्वयार्थ का। बहिरात्मा इंद्रिय द्वारों थी बाह्य पदार्थों ने ज ग्रहण करवामा प्रवृत्त हुआ थी, क्योंकि इंद्रियों से तो बाह्य पदार्थों ही जाने में आ जाएंगे, यानी उसमें केवल बाह्य पदार्थों में ही वो प्रवृत्त है। आत्मज्ञान थी परांगमुख एटले वंचित होय छे, तेथी ते पोताना शरीर ने मिथ्या अभिप्राय पूर्वक आत्मा रूप समझे छे। यानी इंद्रियों के द्वारा ही, जैसे वो तो उसको मैं हूँ ये तो एहसास है, हमने देखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी बहुत विस्तार से इस पर बात की थी कि अनादि से इस जीव को तो अपने होने का तो एहसास है, और अनादि से इंद्रिय ज्ञान ही है उसके, तो इंद्रियों से वो मैं हूँ कौन हूँ तो उसको जानने की कोशिश करता है, तो उसको ये शरीर रूपी जो है वही इंद्रियों के द्वारा वही जाना जाता है। तो यही मैं हूँ ऐसी उसके अनादि से ही कल्पना हुई है। अभी इसकी टीका पढ़ेंगे हम। इंद्रियो रूप द्वारो थी अर्थात इंद्रियो रूप मुख थी बाहर ना पदार्थों ना ग्रहण मां रोकाए लो, ये ग्रहण इन्हें हुए तो जानना है, परंतु उस मुखों के द्वारा उसको ग्रहण करता ऐसे कहने की यहाँ पद्धति बनी है। समाधि तंत्र पृष्ठ 19 जो है श्लोक 7 की टीका। इंद्रियो रूप द्वारो थी अर्थात इंद्रियो रूप मुख थी बाहर ना पदार्थों ना ग्रहण मां रोकायेलो हुआ थी। जैसे मुख से हम पदार्थों का ग्रहण करते हैं, इंद्रियों रूपी मुख यानी इंद्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों को जानने में आता है, वहां ग्रहण क्या करना है, वहां तो जानना है। ग्रहण शब्द दो अर्थ में आता है, ग्रहण यानी लेना खाना वो सब ग्रहण में आता है, या जानना। ते बहिरात्मा मूढ़ात्मा चे, ते आत्मज्ञान थी परांगमुख अर्थात जीव स्वरूप ना ज्ञान थी बहिर्भूत छे, बाहर छे, उसका आत्मज्ञान है नहीं। तेवो थयेलो ते बहिरात्मा शू करे छे, तो कहते पोताना देह ने आत्मा रूपे माने छे, अर्थात पोतानु शरीर जे हूँ छू एवी मिथ्या मान्यता करे। हाँ, एमां कई गड़बड़ी छे अमारी पुस्तक में। पोताना देह ने आत्मा रूप माने छे अर्थात पोताना शरीर जे तेज चाहिए ना, आपके पुस्तक में क्या
पोतानो शरीर जे ऊंचू एवी मान्यता,
नहीं तेज ऊंचू ये हमारी पुस्तक में गलत है, तेज ऊंचू चाहिए, जे के बदले तेज ऊंचू,
जे की जगह तेज ऊंचू,
तेज ऊंचू पोतानो शरीर तेज ऊंचू ये बराबर फीडबैक एवी मिथ्या मान्यता करे। यानी उतना ही अपना स्वरूप मान लेता है। भावार्थ, बहिरात्मा इंद्रियों द्वारा जे बाह्य मूर्तिक पदार्थों ग्रहण करे छे, मूर्ति यानी पुद्गलों को ही जानने में वो निमित्त होती है, तेने मोहवशात पोताना माने छे, भ्रम से तेने अंतरना आत्मतत्वनु काई पण ज्ञान नथी, तेथी ते पोताना शरीर ने ज आत्मा समझे छे। अर्थात शरीर मन अने वाणीनी क्रिया जे जड़नी क्रिया छे, ते तीनों ही जड़ है, पुद्गल से बने हैं और इनकी क्रिया भी जड़ की क्रिया है, के जड़नी क्रिया छे तेने पोते करी शके छे अने तेनो पोते स्वामी छे एम माने छे। अपने को जड़ ही मान रहे हैं ना, शरीर मैं हूँ ये मान्यता है, मन के द्वारा जो क्रिया होती है वाणी की जो है वो मेरी ही क्रिया मानता है, अपनी ही क्रिया मानता है, यानी उसने स्वयं को जो चैतन्य स्वभाव है उसने अपने को तो जड़ रूप मान लिया। जीव त्रिकाली ज्ञान स्वरूप छे, कायम वो ज्ञान स्वरूप ही है, तेने बहिरात्मा अज्ञानवश जानतो नथी, अने बाह्य इंद्रियो गोचर इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आते हैं, बाह्य इंद्रियो गोचर पदार्थों जे मात्र ज्ञेय रूप छे, मात्र ने ओनली सिर्फ वो ज्ञान के ज्ञेय है, तेमा इष्ट अनिष्ट ने कल्पना करी। देखो क्या कहता है, ये तो इंद्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों कौन से, तो पुद्गल ही जानने में आते हैं, तो पुद्गल दो टाइप के हैं ना इस विश्व में, अच्छे पुद्गल और बुरे पुद्गल, नहीं ये क्या कहा है हमने, तो कहते बाह्य इंद्रिय गोचर पदार्थों जे मात्र ज्ञेय रूप थे, उसके ज्ञान के ज्ञेय मात्र थे, वो जानने में आ रहे, इसने क्या किया, तेमा इष्ट अनिष्ट नी कल्पना करी, पोताने सुखी दुखी, धनवान निर्धन, बलवान निर्बल, स्वरूप कुरूप, राजा रंक वगैरह होवानु माने छे। यानी अपने को उस रूप मान लिया, मैं निर्धन हूँ तो हीन दीन मानने लगा, दूसरे कितने पैसे वाले धनवान है वही सारा धर्म कर सकते हैं क्यों ऐसा हमारे आशा बहन ने पूछा था, ये सारे धनवान ही क्यों धर्म करते हैं, क्या निर्धन नहीं कर सकते, यानी अपने को धनवान या निर्धन मानता है ना, अपने को पहले में पहले दृष्टि कहाँ है पैसे की, अरे उन पैसे की कहाँ बात है, वो तो अपने से बिल्कुल परद्रव्य है, तो उससे मैं महीन हुआ हूँ या मैं बड़ा हूँ या मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत, उसका सवाल ही नहीं आता यहाँ पर, वो तो अत्यंत भिन्न है, अरे शरीर भी नहीं है अपने रूप, तो वो तो पैसे की क्या कथा। तो इसने क्या मान लिया कि मैं धनवान हूँ या मैं निर्धन हूँ, यानी अपने को धनवान मानने वाला भी उसको मान कसा है और निर्धन मानने वाला भी, हीन मानने रूप भी वो मान कसा का ही रूप है। बलवान निर्बल, शरीर के जो बल है उसको अपना बल मानकर मैं बलवान हूँ या मैं निर्बल हूँ, अभी यहाँ पैरालिसिस हो जाए तो अरे मैं तो हीन दीन निर्बल हूँ, मैं हिल नहीं सकता, शरीर की अवस्था मेरी हुई है ऐसा मान लेता है। स्वरूप कुरूप, राजा रंक वगैरह होवानु माने छे, रंक है वो तो धनवान बनने की कोशिश में, कुरूप है वो स्वरूप बनना चाहता है ना, विशेष, और फिर वो वैसा बनकर क्या करेगा, सुखी तो होगा कि नहीं, निर्धन था अभी धनवान हो गया। तो कहते उसकी तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो चलती ही रहती है, और जो संयोगी है वो अपने से भिन्न ही है, तो उसमें हमने ये कुछ अच्छा कुछ बुरा ये मानकर उसी का लक्ष्य कर रहे हैं, उसका लक्ष्य छोड़ना था, अपना लक्ष्य करना था कि सुख जहां भरा है वहां लक्ष्य करने से वो पर्याय में प्राप्त हो जाता, जिसमें से कभी सुख मिलने ही वाला नहीं है उसी को सुख दुख का कारण मानकर उसी, हाँ उसी में वो कुछ हेरा फेरी करना चाहता है, इसके इच्छा के अनुसार तो परिणाम होता नहीं, बाय चांस कुछ थोड़ा बहुत परिणाम हो जाए तो मैंने किया है। विशेष मिथ्या अभिप्रायवश अज्ञानी माने छे के શરીર ઉત્પન્ન થવાથી મારો જન્મ થયો. શરીર મેં હું માના તો શરીર ઉત્પન્ન હોય તો મેં જન્મ. શરીરનો નાશ થવાથી હું મરી જઈશ. સામે બીમારી દીખતી મહાભંગ રે મેં મર ગયા અભી ક્યાં કરું એમ નષ્ટ હો જાઉંગા. શરીરની ઉષ્ણ અવસ્થા થતાં મને તાવ આવ્યો. શરીરની ભૂખ તરસ તરસની કૃષ્ણ ત્યાસ આદિરૂપ અવસ્થા થતાં મને ભૂખ તરસ લાગી. શરીર કપાઈ જતાં હું કપાઈ ગયો વગેરે. અભી શરીર કી જો જો અવસ્થા હૈ વો મેરી અવસ્થા હૈ એસા માન લેતા. એ રીતે અજીવની અવસ્થાને તે પોતાના આત્માની અવસ્થા માને છે. એને કિતની બડી ભૂલ હૈ ઉસકી હૈ ને. આત્મા તો ઇનસે બિલકુલ તદ્દન જુદા હૈ ફિર ભી શરીર કી જો જો અવસ્થા હો રહી હૈ વહ મેરી અવસ્થા યે ઉસકી ભૂલ હો રહી હૈ. अब ये इन्वर्टेड कॉमा में है. मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अंश होना चाहिए. एक अकड़ा कहाँ का दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक. हाँ देखो आपने आप रूप जाने तेमा परनो अंशपन न मेलवो तथा पोतानो अंशपन परमा न मेलवो एवं साचु श्रद्धान करतो नथी. ये अज्ञानी बहिरात्मा क्या કરતા ક્યાં નહીં કરતા તો કે તે સચ્ચા શ્રદ્ધાન નહીં કરતા. તો સચ્ચા શ્રદ્ધાન કૈસા હોના ચાહીએ જે આપને આપરૂપ જાણે. જો મેં સ્વયં હું આત્મા કો આત્મારૂપ જાના અપને કો સ્વરૂપ જાના જૈસા અપના સહી સ્વરૂપ હૈ વૈસા અપને કો જાના. વો જાણકર ક્યા કરના હૈ પરનો અંશ પણ ન મેળવો. અપને મેં દૂસરે કા અંશ તક નહીં મિલાના. એને શરીર કી ક્રિયા હૈ મન કે જો કાર્ય હો રહા હૈ યે જો કુછ હમ કહે રહે કે વાણી કા કાર્ય હો રહા હૈ ઉસકા અંશ માત્ર ભી અપને મે નહીં મિલાના. કહીં ના કહીં કિસી ના કિસી રૂપ મે ઉસકા અંશ અપને કો મિલાતા રહેતા હૈ. અજ્ઞાની કહેને કે લિયે અરે મેં શરીર રૂપ નહીં હું કહેતા હૈ પરંતુ અન્ય અન્ય બાતે ચલતી રહેતી હૈ. એટલે પરનો અંશ પણ ન મેળવો અને પોતાનો અંશ પણ પરમા ન મેળવો. પોતાનો અંશ પરમાનો મેળવો ને એવી જ્ઞાન તો મેરા સ્વભાવ હૈ વો મેરી પર્યાય વો હમને વો ઇન્દ્રિયો સે જ્ઞાન હોતા હૈ એસા માન લિયે તો અપના અંશ પરમે મિલા દિયા હમને. ધ્યાન મે આઈ
બાત.
બુદ્ધિ યાની વો તો બ્રેન સે. હા જે એવો સાચો શ્રદ્ધાન કરતો. સચ્ચા શ્રદ્ધાન ક્યાં પર કા અંશ અપને મેં નહીં મિલાના અપના અંશ ભી પર મેં નહીં મિલાના. અપને કો અપને રૂપ જાનના પર કો પર રૂપ જાન ઇતના હી કરના થા. ઓર એસા યહી સચ્ચા શ્રદ્ધાન. અજ્ઞાની એસા સચ્ચા શ્રદ્ધાન નહીં કરતા. એક વાત જેમ અન્ય મિથ્યા દૃષ્ટિ નિર્ધાર વિના નિર્ધારે નિર્ણય વિના નિર્ધાર કરના એને નિર્ણય કરના વો તો કન્ક્લુઝન તક પહોંચના કે એસા હી હૈ. તો નિર્ધાર વિના પર્યાય બુદ્ધિ થી એ પર્યાય બુદ્ધિ કિસકો કહેના. કોણ સી
પર્યાય.
હા મનુષ્ય પર્યાય. યહાં પર્યાય ને જો ભવ નારકી હૈ દેવ હૈ યા મનુષ્ય તિર્યંચ જો હૈ વો પર્યાય ઓર ઉસ રૂપ મેં હું યે પર્યાય બુદ્ધિ. અભી મનુષ્ય હુઆ હૈ તો મનુષ્ય જીતના હી મેરા અસ્તિત્વ હૈ યે માનના યે પર્યાય બુદ્ધિ. જેમ અન્ય મિથ્યા દૃષ્ટિ નિર્ધાર વિના પર્યાય બુદ્ધિથી જાનપણામાં વા વર્ણાદિમાં અહમ બુદ્ધિ ધારે છે. વાક અર્થ થાય ઓર. મિથ્યા દૃષ્ટિ ક્યાં ક્યાં કરતા હૈ અહમ બુદ્ધિ કિસમે કિસમે કરતા હૈ. યહાં ક્યાં લિખા હૈ ક્યાં ક્યાં લિખા હૈ જાનપણામાં. જાનપણા ને જો મેં હું ये अज्ञानी किसमें मानता है. जान पढ़ाने ज्ञान आदि तो हो रहे हैं ना उसके ज्ञान भी अपने को ज्ञान हो रहा है वो जानने में आता है कि नहीं. तो ज्ञान आदि ये अपने गुण और दूसरा उसमें अहमपना किसमें कर रहा है वर्णादि. वर्णादि यानी शरीर के जो स्पर्श रस गंध वर्ण है. ज्ञानादि और वर्णादि ये मिलकर मैं हूं मान लेता है. निर्धार नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये शरीर कौन है, ये पर है। क्या कहते हैं, जेम अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार विना, पेज नंबर 19 लास्ट लाइन मिला, पर्याय बुद्धि थी जानपणा मा वा इने और वर्णादि मा अहम बुद्धि धारे छे तेम आपन, यानी अभी जो अज्ञानी की बात चल रही वो भी आत्माश्रित ज्ञानादि मा, ज्ञानादि है वो आत्मा के आश्रित है, वो आत्मा की पर्याय, तथा शरीराश्रित उपदेश उपवासादि क्रियाओं मा उतापनु माने छे। देखो ऐसा क्यों लिखा यहाँ पर, हाँ देखो ये सुनो पहले, अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार विना, अन्य मिथ्या दृष्टि के साथ क्यों कंपैरिजन की, ये कहाँ का अंश है लक्ष्मी जी, ये मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है ना, तो उसमें फिर और अन्य मिथ्या दृष्टि डालने की क्या जरूरत थी। ये सातवें अधिकार की बात होनी चाहिए, है ना, क्यों अन्य मिथ्या दृष्टि जैसे मानते हैं, ऐसे जैन होकर भी क्या मान रहा है कि आत्माश्रित ज्ञानादिमा और शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में पोतापन माने। उपवास आदि जो कोई क्रिया है वहाँ मूल में क्या है, उपदेश लिखा है, क्या लिखा है जरा पूछ मोक्ष मार्ग में देखेगा, देख क्या है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पुस्तक निकालना आपके पीछे लेफ्ट साइड में, हाँ ये भी जैनी होकर भी शरीर की क्रियाओं को और ये मिलकर लेफ्ट साइड में, हाँ
बीच में है देखो,
वो बीच वाले जो सारे हैं वो कवर वाले, हाँ ले लो वो कवर वाला, हाँ वो भी है, और गुजराती देखना है तो राइट साइड की एकदम राइट साइड की पुस्तक गुजराती है, हाँ गुजराती में 229 है, वो वही की अभी जो निकाला ना उसी के एकदम राइट कोने में है जो पुस्तक, हाँ वो गुजराती है, सातवें अधिकार की बात है ना, व्यवहाराभासी की बात होगी ये, जीव अजीव श्रद्धा नहीं और यथार्थता, सातवें अधिकार की बात, जब अन्य मित्र निधारण पर्याय बुद्धि थी जानपणा में वर्णा दी धारते में आप कौन आत्माश्रित ज्ञानार्मिना शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में पोतापनु माने छे। यानी जो उपदेश देना यानी वो वाणी की क्रिया उसमें अहमपना मान लेता, और उपवास आदि तो अन्य भी क्रिया है उसमें जो कुछ है, हाँ ये तो शरीर की क्रिया, वो शुभ भाव की तो बात छोड़ो, शरीर की क्रिया में पोतापन माने, अन्य मिथ्या दृष्टि जैसे मान रहे वैसे ही ये भी उपदेश तो वाणी की क्रिया हो गई ना, क्रियाओं में लिखा है भावों में नहीं लिखा, आदि क्रियाओं में पोतापन माने छे, वही पर्याय में अभी बीच का कुछ अंश छोड़ दिया, पर्याय में जीव पुद्गल ना परस्पर निमित्त थी अनेक क्रियाओं थाय छे, यानी जीव के और शरीर के बहुत सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ते सर्व ने बे द्रव्यो ना मेलापती निपजी माने छे, दोनों ने मिलकर क्या मानता है, शरीर की सेपरेट शरीर से होती है, जीव की जीव से होती है, ऐसी मान्यता नहीं है, दोनों ने मिलकर कर दिया ऐसा मानता, ये अन्य मिथ्या दृष्टि के साथ क्यों कंपेयर किया, अन्य मिथ्या दृष्टि तो शरीर को ही पूरा आत्मा मान रहा है, अब ये जैनी है कहता तो है मैं भिन्न हूँ शरीर भिन्न है, परंतु उसमें वो तो सब मान्यता वही रही, पर आ जीवनी क्रिया छे तेमा पुद्गल निमित्त छे, तथा पुद्गल नी क्रिया छे तेमा जीव निमित्त छे, एम भिन्न भिन्न भाव भासतो नथी, जैसे बोलना जो है वो क्रिया तो भाषा वर्गना के पुद्गल की क्रिया है, जीव उसमें निमित्त है, और कुछ क्रिया कैसी होती है जीव की है, जैसे जानना वगैरह जीव की है, और वहां तो द्रव्य इंद्रिया भी वहां निमित्त रूप से है वहां पर, या कर्म का भी कहीं निमित्त पड़ता है उसमें, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध का उसको ज्ञान नहीं। अब दूसरा एक उदाहरण दे रहे हैं समय सार का। जेनी मति, मति यानी बुद्धि, अज्ञान थी मोहित छे, मोहित हुए है ना वो, तो विपरीत हुई है, जैसा सही है वैसा नहीं जान रहा है। अने जे मोह राग द्वेष आदि घना भावों थी सहित छे, एवा जीव एम कहे छे के आ शरीर आदि बद्ध तेमज धन धान्या थी अबद्ध पुद्गल द्रव्य मारू छे। ये शरीर आदि कैसे बद्ध है, आत्मा की ही प्रदेशों में वो अभी बंधी हुई अवस्था में है, वो बद्ध द्रव्य हुआ। धन धान्य घर वगैरह पैसा क्या है, अपने से भिन्न है, अबद्ध है, वो मेरा है। नीचे देखो उसका रेफरेंस दिया है, समयसार गाथा 23। ज्ञान थी मोहित मति बहु भाव संयुत जीव जे आबद्ध तेम अबद्ध पुद्गल द्रव्य मारूं ते कहे। वो मेरा है ऐसा वो अज्ञान के कारण मानता है। अब आगे बढ़ेंगे अभी हम यहाँ पर। ये उन्होंने अलग अलग रेफरेंस दिए विशेष कहने से, ये उसकी सारी ये भावार्थ और विशेष कहाँ से, वो गुरुदेव के प्रवचनों में से ही लिखा होना चाहिए। छोटा लाल भाई ने किया है, उन्होंने कुछ तो शास्त्रों के रेफरेंस दिए और ये तो बाकी बात तो गुरुदेव के प्रवचनों से ही लगती है, इसको विशेष में उन्होंने लिख दिया है। अभी जो हम सात्विक आती का विशेष देख रहे हैं यहाँ पर, अभी समय सार के बाद हम आगे पढ़ रहे हैं। बोली शरीर आदि बाह्य पदार्थों में एकता बुद्धि करवाती अज्ञानी ने भ्रम थाई छे के, एकता बुद्धि ने वह और मैं एक में खो गए ऐसा मानता है तो उसको क्या भ्रम होता है। रस रूप गंध स्पर्श अने शब्दनु जे ज्ञान थाई छे। देखो ये तो ज्ञान करने वाला तो जीव है और रस रूप गंध स्पर्श है तो पुद्गलों के गुण उसके पर्याय हैं और शब्द भी वो स्कंद है पुद्गलों का, पुद्गल से ही बना है, यानी सारे पुद्गल के ही पर्याय है। तो उसका जो ज्ञान होता है एनु जे ज्ञान थाई छे ते इंद्रियों थी थाय छे, इंद्रिय ही जानती है ऐसा मानते हो, क्योंकि शरीर से एकता बुद्धि है ना। अरे आंखों ही देखने का कार्य करती है, यानी वहां से जीव करता है वो निमित्त है ऐसा भी नहीं कहे, आंखें ही देखती है ये कहना चाहते हैं। तथा घटपटादीनु जे ज्ञान थाय छे ते बाह्य पदार्थों थी थाय छे, क्या कहते हैं, तो जो ज्ञान हो रहा है वो इंद्रिय से हो रहा है और किससे हो रहा है, बाह्य पदार्थों के कारण ज्ञान हो रहा है। जैसे घड़ी देखने से ज्ञान होता है हमको कितने बजे समझ में आया, सामने पदार्थ है तो पदार्थ के कारण ज्ञान होता है, ऐसी उसकी मान्यता है। दो मान्यता है, दोनों गलत है। एक तो इंद्रियां जानने का कार्य कर रही एक बात और वो पदार्थों के कारण ज्ञान हो रहा है, ये दूसरी बात। पण तेने खबर न थी कि जीव ने जे ज्ञान थाय छे ते पोताना ज्ञान गुणरूप उपादान शक्ति थी थाय छे। तो कौन से गेय को जानना ये तो कौन नक्की करेगा, सामने गेय होता तो वही तो जानना चाहेगा ना। तो हाँ, वो ज्ञान में ही, जैसे ज्ञान गुण में जानना 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 शक्ति है, तो किस समय किस गेय का ज्ञान होगा, कौन सी पर्याय वहां प्रकट होगी, ये भी नक्की है, जिसको हम क्षणिक उपादान कहेंगे। ज्ञान गुण तो उसका त्रिकाली उपादान है, परंतु उसके जो उसका पर्याय का जन्म क्षण कहो, उसको काल लब्धि कहने से काल की ओर से बात करेंगे, किस समय कौन सी पर्याय होगी और होनहार में कौन सी पर्याय होगी, पर्याय निश्चित है, उसका समय भी निश्चित है। ये हर गुण के हर पर्याय में लागू होता है, हर द्रव्य के हर गुण के हर पर्याय में ये बात लागू होती है कि जो कोई पर्याय होती है वो द्रव्य से अपने से होती है, विशिष्ट समय पर होती है, होने वाली होती ही है, वो न हो ये भी नहीं बन सकता और होकर ही रहेगी, यानी इतना सब कुछ निश्चित है। तो ज्ञान भी जो जानने का कार्य करता है, तो किस ज्ञेय को वो ज्ञान जानेगा उस समय, ये भी निश्चित है। परंतु हमने अपने को पराधीन माने, सामने चीज नहीं हो तो मुझे कैसे पता चलेगा, ऐसा लगता है। सामने चीज है परंतु उसका जो ज्ञान रूप, जो पर्याय में जानने रूप कार्य हो रहा है वो अपने से हो रहा है। तो सामने चीज है, हम बैठे हैं सीढ़ी टेप लगा के सुन रहे हैं और मन कहीं भटक रहा है, तो सामने चीज है ना, वो वाणी चल रही है ना, और ज्ञान कहीं अन्य का चल रहा है। तो ये ज्ञान अपने से, अभी यहाँ ऐसा स्वच्छंद नहीं करना है, वहां तो अपनी भूल है, परंतु यहाँ जो कुछ हो रहा है वो कुछ निश्चित है, वो ज्ञान अपने से होता है। यही कह रहे कि अज्ञानी को खबर नहीं है, क्या खबर नहीं, कि जीव ने जे ज्ञान थाई छे ते पोताना ज्ञान गुण रूप उपादान शक्ति थी थाई छे, इंद्रियों ने घटपटादी पदार्थों तो जड़ छे। इंद्रिया भी जड़ है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। प्रकाश है वो भी जड़ है, उससे भी ज्ञान नहीं होता। तो सामने पदार्थ जो इंद्रियों के द्वारा जो जाने जाते वो सारे जड़ है, क्योंकि वो पुद्गल को ही जानते हैं, इसलिए उससे भी ज्ञान नहीं होता। वो सारे जड़ से ये चेतन को ज्ञान हो जाए, इतना चेतन पराधीन हो जाए, ये तो बात नहीं होती। जैसे वो घटपटादी जो कुछ पुद्गल की जो पर्याय है, वो पुद्गल भी स्वतंत्र है, उसकी पर्याय अपने में अपने कारण होती, वो भी जीव ने बनाई, जीव ने की तो वो हो जाती, ऐसा भी नहीं है, वो भी स्वतंत्र है। क्या हमने माना ऐसा? अरे घर के काम हम नहीं करते तो कुछ आगे नहीं बढ़ते हैं ना। वो धूल भी इधर से हटती नहीं है, हम नहीं साफ करेंगे तो ये पुद्गल में वहां बैठने की वो ताकत है कि नहीं है, स्थिर रहने की, वो धूल को वहां बैठने की, यानी वो धूल जो धूल रूप जो कण है वो अभी उसकी अवस्था वहां विराजमान है हमारे सोफे पर, है ना। जब हम उसको साफ करेंगे उसके वो कपड़े में जाने रूप उनकी अवस्था हो जाती है, हमने की इसलिए गए क्या, उसमें वो योग्यता है। कौन से रचकन आके अपने घर में धूल रूप से यहाँ जमीन पर पड़ेंगे, ये नक्की है कि नहीं उसमें, ये कोई बहुत बड़ा वो ऐसे आता है चक्रवात आता है ना, क्या होता है बाबा झोड़ू, तो कहाँ के धूल कहाँ उड़कर चली जाती है, वनटोड़ियो, ये नक्की है ना उस रचकन में भी। ये सामने ब्रिज बन रहा था ना, आपने देखा था जब बन रहा था, तो पहले तो कितने वो सब नीचे से सब माल उतार दिया, फिर वो तो वहां दो तीन बार तो वहां से हटाया, फिर दूसरा लाके डाला, फिर कुछ हटाया, क्या क्या गया, बोला देखो परमाणु की क्या क्या अवस्था हो रही है, कहाँ की धूल मिट्टी यहाँ लाके डाल रहे हैं और यहाँ की उखाड़ कर और कहीं ले जा रहे हैं। तो ये उनमें ये नक्की है कि नहीं है, और फिर सारी पब्लिक, ये तो ब्रिज बने तभी कितनी चल रही थी, ये इतना ब्रिज बनाते हैं, इतना पैसा खाते हैं, वो तो उनके भाव उनके साथ है। ये परमाणु की जो योग्यता है उसकी अपनी योग्यता से बनी, इतना हम नक्की करेंगे तो शांति होगी कि नहीं। यहाँ क्या कहते, इंद्रियों ने घटपटादी पदार्थ तो जड़ छे तेनाथी ज्ञान थाय नहीं। यहाँ तो अपनी बात चल रही है, ज्ञान जो हो रहा है अपने से हो रहा है, उनकी जो पर्याय हो रही है उनसे हो रही है। ते तो ज्ञान थवामां निमित्त मात्र छे, ए रीते बहिरात्मा पोताना ज्ञानात्मक स्वभाव ने भूली, शरीरादि पर पदार्थो थी पोतानु अस्तित्व माने छे। देखो मैं जान सकता हूँ, मैं सबको जानने वाला हूँ, चेतन पदार्थ हूँ, इसका अहो भाव आता है क्या, पर पदार्थों का अहो भाव आता है, किसमें बड़प्पन लगता है, अरे चकाचौंध वो बाहर की सब देख देखे, अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, समझ में आती बात, यानी ज्ञान की महानता भाषित नहीं हुई, यही कहते। तो पोताना ज्ञानात्मक स्वभाव ने भूली, शरीर आदि पर पदार्थों थी पोतानु अस्तित्व मानी जाए, और उसके कारण मैं बड़ा हूं, मैं सुंदर हूं मानता है, तो उसका वो तो ज्ञान स्वभाव है, कितना परिपूर्ण है, केवल ज्ञान लेने की ताकत वाला ज्ञान यहाँ पड़ा है। अब उसका शरीर के साथ संयोग है, कभी तीर से बना, कभी नारकी बना, कभी देव बना, देव बना तो बाहर सुंदर शरीर हो गया, और नारकी बना तो कुरूप हो गया, मनुष्य में भी यथातथा होता है, तो शरीर की अवस्था से उसका ज्ञान भी, वो सामर्थ्य भी हीनाधिक होता है ना, नहीं, अपने को कैसा मानता है, कैसा फील हो रहा है उसको, जैसी शरीर की अवस्था वैसी मैं हूँ, और फिर दुखी दुखी होता है। अभी तो छोटा है, बड़ा है, फिर बड़ा हो जाता है, युवान होता है, फिर बुढ़ापा हमारे जैसा आ जाता है, पहले जैसी ताकत नहीं रही, पहले जैसा, तो अपने को कैसा मानता है। अरे 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 अभी सब अभी कुछ याद नहीं रहता है, अभी ऐसा होता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, अपने ज्ञानात्मक ये स्वभाव को कभी नहीं हुआ, ये पर्याय की तरफ हम देखते हैं, पहले मैं बहुत जानता था, अभी मेरी बुद्धि कम हो गई, यानी कहाँ देखा उसने, कहाँ अपना अपना अस्तित्व पर्याय जितना ही मान लिया, अपना परिपूर्ण सामर्थ्य प्रत्येक पर्याय के पीछे पड़ा है। पर्याय है तो वहां पूरा ध्रुव है कि नहीं है, किसी भी पर्याय, पर्याय कैसी भी क्यों ना हो, उसके पीछे परिपूर्ण द्रव्य सामर्थ्य पड़ा है, और हर पर्याय में वो सामर्थ्य देखने की अपने जो संगी पंचेंद्रिय है तो उसमें इतनी तो कैपेसिटी है ना कि अपने स्वभाव के सन्मुख होकर उसको जाने, नक्की तो करना है, हर पर है तो ये नक्की है, उसने अपने पर्याय में उसका कबूल नहीं किया है, उसका सन्मुखता नहीं की, इतनी करने बात, कहीं लाना नहीं है, कहीं निर्माण करना नहीं, कुछ नहीं है। तो अपने ज्ञानात्मक स्वभाव ने भूली शरीरादि पर पदार्थों थी पोतानु अस्तित्व माने छे, अर्थात शरीरादि पर पदार्थों माते आत्मबुद्धि करे छे, यह मैं हूं ऐसा मानता है। ये तो हमने यहाँ पर सातवां श्लोक और उसका भावार्थ और विशेष देखा सब। अभी हम आत्मभावना पुस्तक में इसी श्लोक की बात देखेंगे, गुरुदेव क्या कहते हैं। आत्मभावना हमारे में सुरम का, हाँ वो आठवें नौवें श्लोक के लिए रेफरेंस है, ज्ञानार नव में शुभचंद्राचार्य क्या कहते हैं। अभी यहाँ हमारे में आत्मभावना के 33 नंबर का पृष्ठ है, छोटी पुस्तक में कोई नंबर अलग होगा, 50 है। चलो, बहिरात्मा जीवनी मिथ्या बुद्धि नु वर्णन, हेडिंग दिया है इसका, मिला आपको। हवे बहिरात्मपणु छोड़ावा माटे आचार्य देवतेनु स्वरूप स्पष्टपणे ओळखावे छे, तेमा पहला ए बतावे छे के बहिरात्मा ने देहमाज आत्मबुद्धि केम थई गई छे। बहिरात्मेन्द्रिय द्वारैरात्मज्ञान परांमुख स्फुरित स्वात्मनो देहम आत्मत्वेनाध्यवस्यति, अध्यवसाय यानी अध्यवस्यति है ना, उसी में वो एकता बुद्धि करता है, मिथ्या मान्यता कर लेता है। एक बहिरात्मा पोताना आत्मज्ञान थी परांगमुख वर्तो तो थको, देखो एक शब्द आता है स्वन्मुख यानी सन्मुख यानी उसकी तरफ मुड़ना, परांगमुख यानी उससे हट जाना, तो किससे हट गया, आत्मज्ञान से, अपने ही ज्ञान से। परांगमुख वर्तो तो थको, इंद्रियों द्वारा शरीरादि बाह्य पदार्थों ने ज जानवामा तत्पर छे, क्योंकि इसका इंद्रिय ज्ञान तो है ही है, कभी एक इंद्रिय हुआ, कभी द्विंद्रिय आदि पंचेंद्रिय तक कुछ भी पर्याय प्राप्त कर दी, परंतु था तो इंद्रिय ज्ञान ही, मात्र इंद्रियों के द्वारा ही जानने का कार्य करता था। तो कहते बाह्य पदार्थों ने ज जानवामा तत्पर छे, आत्मा ने तो ते देखतो नथी, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा तो नहीं दिखाई देगा, वो तो लक्षणों के द्वारा हम नक्की करेंगे, ये तो इंद्रियों के द्वारा ही जानने में तत्पर है। तो कहते आत्मा ने तो ते देखतो नथी, तेथी ते शरीर ने ज आत्मा तरीके मानी ले छे, शरीर ही दिखाई दे रहा है, और यहां से ज्ञान होता हुआ ख्याल आ रहा है, मैं हूं ऐसा यहां लग रहा है, और यहां देखा तो क्या दिखा, तो शरीर दिखा, तो यही मैं हूं मान लिया। तेने देहाध्यास थई गयो छे, देहाध्यास ने देह ही मैं हूं ऐसी मान्यता हो गई, देहाध्यास हो गया, तेथी देह थी पोतानु जुदापनु तेने भासतुज नथी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है ये कब तक ये तत्व निर्णय होना चाहिए, जैसे वस्त्र से अपना जुदापनु प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है ना कि किसी को बताना पड़ता है, नहीं ऐसे ही शरीर आदि से अपना भिन्नत्व स्पष्टपने उसको भाषित होना चाहिए, तब तक अभी उसका निर्णय नहीं हुआ। તો કહેતે કે દેહથી પોતાનું જુદાપણું તેને ભાસતું જ નથી, જ્ઞાનને આમ બહારમાં જોડે છે પણ અંદરમાં વાળતો નથી. અર વો અંદર કબ જાયેગા તો પહેલે પહેલે નિર્ણય કરેગા, બુદ્ધિ મેં સોચેગા સુનેગા, અરે મેં તો ભિન્ન હું એસા કહે રહે હૈ, સર્વજ્ઞ ભગવાનને બતાયા, હમારે જ્ઞાની આચાર્ય વહી બાત કહે રહે હૈ, ફિર સ્વયં વિચાર સે અનુમાન સે પહેલે નક્કી કરેગા કે જાનને કા કાર્ય જાનને કા લક્ષણ તો મેરા હૈ, જીવ કા હૈ, ઓર શરીર તો દિખાઈ દે રહા હૈ, ઇન્દ્રિયો કે દ્વારા જાના જાતા હૈ, તો યે નક્કી પુદગલ દ્રવ્ય, તો મેં ભિન્ન દ્રવ્ય હું જો જાનને કા કાર્ય કરતા, યે પુદગલ ભિન્ન હૈ જો સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ યુક્ત હૈ. ઇસ તરહ સે પહેલે વિકલ્પાત્મક જ્ઞાન મેં વો વિકલ્પો મેં વો નક્કી કરેગા. અભી આત્મા કા લક્ષ્ય કરના વો તો આગે કી બાત હૈ, પહેલે યે અનુમાન સે વો નક્કી કરેગા, લક્ષણ સે નક્કી કરેગા, હે ને. તો અભી તક ઉસકી ક્યા ભૂલ રહી હૈ, ભૂલ હો રહી કે વો ઇન્દ્રિયો કે દ્વારા બાહ્ય મેં જાનને કી કોશિશ કર રહા હૈ, અંદરમાં વાળતો નથી. બહારમાં ઇન્દ્રિયોના અવલંબને તો જડ દેખાય, ક્યોંકિ ઇન્દ્રિયા તો રૂપી કો હી જાનતી હૈ, વો અચેતન કો હી યાની પુદગલ કો હી જાનતી હૈ, કઈ આત્મા ન દેખાય, તેથી તે બહિરાત્માને શરીરથી પૃથક આત્માનું અસ્તિત્વ ભાસતું જ નથી. આત્મા કા અસ્તિત્વ માનને કે લિયે ભી તૈયાર નહીં. એસે મિલતે હૈ લોગ, આત્મા હોતા તો દિખાઈ નહીં દેતા, બાકી તો હમ જિસકો જિસકો દેખતે ઉસકો હમ માનતે હૈ. હમ તો આજકલ કે નયે હૈ ના લોગ, ન્યુ જનરેશન, આપ પ્રૂવ કરો તો હમ માને. તે તો શરીરને જ આત્મા માને છે. દેખો શરીર કો આત્મા માન લિયા તો યે મેં હું માન લિયા તો યે ઇસકી મેં અવસ્થા મેરી અવસ્થા હૈ. તો મેં જન્મા, મેં છોટા થા, મેં બડા હો ગયા, અભી મેં એસા હુઆ, અભી મેં બુઢા હો ગયા, અભી મર જાઉંગા, યાની મેરા અસ્તિત્વ ઇતના હી માન લિયા. તો ઉતને અસ્તિત્વ કે લિયે વો કોશિશ ઇતની કર રહા હૈ કે મેં શરીર હું તો મેં સુખી રહું, હા ઠીક રહે, મેરા શરીર ભી નહીં હૈ, ઉસકો મેં માન રહા. તે તો શરીરને જ આત્મા માને છે. આત્મા એને સ્વ મેં હું માનતા હૈ. અરે કેવી ભ્રમણ, યાને દેખો જ્ઞાનીઓ કે વિચાર આતા હૈ કે કૈસે, જિસકો કે દુર્દશા હો રહી હૈ કે પોતાનું અસ્તિત્વ જ પોતે ભૂલી ગયો. જાનને વાળા તો સ્વયં હૈ, યહાં પર ભી અજ્ઞાન અવસ્થા મેં ભી જો કુછ જાનને કા કાર્ય હો રહા હૈ વો તો જીવ હી કર રહા હૈ, પરંતુ ઉસકા અપના અસ્તિત્વ ભાસિત નહીં હો રહા. ને જડમાં જ પોતાનું અસ્તિત્વ માની બેઠો, અપને ગુણ ભી જડ કોઈ સુપૂર્દ કર દીએ જાનના વગેરે, એ તો ઇન્દ્રિય જાનને કા કાર્ય કર રહી હૈ, એને સમાધિ ક્યાંથી થાય? આ સમાધિ શતક છે, તેમાં આત્માને સમાધિ કેમ થાય તે બતાવે છે. સમાધિ તે સ્વાધીન છે, આત્માને આધીન છે, બહારને આધીન નથી. ક્યાં કહેના ચાહતે હૈ? સમાધિ અને આત્મા મેં લીન હો જાના, આત્મા કો પહેલે ઉસકો પહેચાના અને ઉસકા વિશ્વાસ કરકે ઉસકે સન્મુખ હોકર ઉસી મેં એકાગ્ર હો જાના, તો સમાધિ હો જાતી હૈ. તે તો અત્યંત સ્વાધીન ચીજ હૈ, ક્યોંકિ જીવ પર મેં કુછ કર હી નહીં સકતા, ના ઉસકા પર મેં કોઈ પ્રવેશ હૈ, ના પરે મેં ઉસકે પર્યાય મેં કોઈ હેરાફેરી કર સકતા હૈ. તો વો તો સ્વયં આત્મા હૈ, તો અપને કો હી જાનતે રહેના, બસ ઇતના હી કરના હૈ, તો પરિપૂર્ણ સ્વાધીન હૈ બાત. બહારને આધીન નથી, બહારને આધીન નથી, અને બાહ્ય મેં એસી એસી બાતે કીએ તો એ તો મિલ ગઈ, એ ભી બાત નહીં હૈ. હા, દેહાદિથી ભિન્ન અનંત જ્ઞાન આનંદ સંપન્ન મારું અસ્તિત્વ છે. દેખો જબ હમ દ્રવ્ય કા અસ્તિત્વ કહેતે તો પૂરા કા પૂરા દ્રવ્ય, ઉસકી પર્યાય તો એક ક્ષણ માત્ર હૈ, પરંતુ પૂરા દ્રવ્ય જો હૈ અનંત ગુણો કા સંપિંડ હૈ, ઓર હરેક ગુણ કી અપની અપની પર્યાય તો ચલી રહી હૈ, તો યે પરિપૂર્ણ દ્રવ્ય હૈ. યાને હમ કહાં દેખતે માત્ર પર્યાય કિતની હૈ ચપે, તો અંશ કો દેખા ઓર પૂરા જો પરિપૂર્ણ વહાં પડા હૈ સામર્થ્ય ઉસકો દેખા હી નહીં, પણ પર્યાય ઇટસેલ્ફ ક્યાં પ્રૂવ કરતે કે વહાં તો દ્રવ્ય પડા હૈ. ભલે કોઈ ભી પર્યાય હો કે જો વિભાવરૂપ હો યા અંશિક કોઈ ભી હો, વો ક્યાં બતા રહી હૈ કે પૂરા દ્રવ્ય યહાં પર પડા હૈ. જાનને કા કાર્ય હો રહા હૈ, हम जान रहे या ये बात हमारी समझ में नहीं आई ऐसा भी कहते हम, यानी वो भी जानना ही चल रहे हैं ना, नहीं समझ में आ रहे हमने जान लिया, तो ये पर्याय हो रही है। तो पर्याय क्या बता रही है, वो ज्ञान गुण को बता रही है। ज्ञान गुण बिना पर्याय कैसे, तो जहाँ एक ज्ञान गुण है वो अनंत गुण भी वहीं पर है। तो एक पर्याय के द्वारा उसको पकड़कर हम पूरे आत्मा तक पहुंचते हैं। पर्याय तो वर्तमान का क्षणिक जो है, परंतु उसके द्वारा हमको देखना, देखो देखने के हमारी नजरिया है। पर्याय को हम भेद कर करके वो पर्याय को पर्याय को पर्याय को देख रहे हैं कि पर्याय के द्वारा हम द्रव्य को देख रहे हैं। द्रव्य और पर्याय एक अभेद है, पूरा अखंड। अकेले पर्याय को देख रहे तो हम उसको भेद को देख रहे, पर पर्याय को पकड़कर हम द्रव्य की तरफ मुड़ रहे। ये तो हमारे अभिप्राय पर निर्भर है, हम किसको देख रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहे, देखो ये जो स्वाधीन है बताया ना, तो हमारा अस्तित्व अपना कैसा है, तो देहादिति भिन्न अनंत ज्ञान आनंद संपन्न मारू अस्तित्व छे एवा भान पूर्वक। देखो अज्ञानी क्या मानता है, अरे शरीर नहीं होगा तो हम कहाँ लेंगे, लटके रहेंगे, यानी शरीर रूपी अपने उसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं, ऐसा मानता है। तो कहते एवा भान पूर्वक आत्मा मा एकाग्रता रहे तेनु नाम समाधि छे। पण देहादिति भिन्न आत्मा ने भूली ने शरीर वगैरह परद्रव्यो ने जे आत्मा माने छे, यानी यह मैं हूं ऐसा मानता है, तेने बाह्य विषयों माथी एकाग्रता छूटे नहीं, यानी अभी उसका निर्णय नहीं हो रहा है कि मैं भिन्न हूं शरीर से भिन्न हूं, और बस वो तो उसका आत्मा का अनुभव करना है। तो कहते बाह्य विषयों माथी एकाग्रता छूटे नहीं ने आत्मा मा एकाग्रता थाय नहीं, क्योंकि उसने अपना अस्तित्व अनंत ज्ञान आनंद संपन्न परिपूर्ण अस्तित्व है, इसको उसने निर्णय पूर्वक स्वीकारा नहीं है। हाँ मालूम है, एटले तेने समाधि न थाय, तेना आत्मा मा असमाधिनु तंत्र रहे। मिथ्यात्वादी भाव ते असमाधि छे, चैतन्य स्वभावनी सन्मुखता थी सम्यक्वादी भाव प्रकटे ते समाधि छे। बहिरात्मा जीव इंद्रिय, पहले बहिरात्मा की क्या भूल हो रही, क्यों हो रही, उसकी बात बताएंगे, क्योंकि इसको तो समाधि कैसी होती उस तरफ ले जाना है। तो पहले अज्ञानी है, उसकी भूल क्या है वो बता रहे। बहिरात्मा जीव इंद्रिय द्वारा ज ज्ञानी प्रवृत्ति करे छे, एटले तेनू ज्ञान एकला बाह्य पदार्थों में ज प्रवर्ते छे, पण आत्मा सन्मुख वर्ततु नथी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वो कोशिश क्या है, इंद्रियों के द्वारा जानने की कोशिश। आत्मा को जानने के नाम पर भी आंखें बंद करके कुछ अंदर कुछ दिखता है कि नहीं, इसको देखता है, नहीं तो उसका अंधेरा दिखता है, कुछ नहीं दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रहा है, वो कैसे दिखेगा, आंखों से थोड़ी दिखने वाला है। या कोई कहता है मुझे तो आंख बंद करके दिव्य प्रकाश मिल गया, वो दिखा हमने, वो तो आत्मा दिखाई दिया हमको, हल्का हल्का लगा हम आसमान में उड़ गए ऐसा लगता था। तो ये उसकी भ्रांति है। आत्मा थी परांगमुख थई ने, यानी आत्मा की उल्टी दिशा में जा, इंद्रिय द्वारा एकला देहादि पदार्थों ने ग्रहण करीने, देहादि में देह और अन्य पदार्थ, तेज हूं एम अज्ञानी माने छे। शरीर थी भिन्न अतीन्द्रिय आत्मा तो तेने इंद्रिय द्वारा भासतो नथी, इन्हें आत्मा ही स्वयं अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियों के द्वारा कैसे जाना जाएगा। जीव स्वरूप नु ज्ञान तो अतीन्द्रिय अंतर्मुख ज्ञान थी ज थाय छे। देखो हमें यहाँ बाहर देखना है, ट्रैफिक की तरफ रस्ते पर, या हमारे कोई पहचान वाले आने थे, हम वहाँ ऊपर से देखते बाहर आए कि नहीं आए, या कुछ भी देखना है तो क्या कहते हैं, हम खिड़की के थ्रू हम देखते नहीं बाहर क्या चल रहा है, और हमने रूम में ही देखना है तो क्या करेंगे, खिड़की के बाहर जाएंगे और अंदर देखेंगे, रम्य आत्मा को अपने को ही जानना है तो इंद्रियों की जरूरत क्या है वहाँ पर। इंद्रियां तो बाह्य चीजों को जानने में निमित्त है, पुद्गल को जानने में निमित्त है, आत्मा स्वयं अपने को ही जानना है तो उसको इंद्रियों द्वारों की आवश्यकता ही नहीं है। तो कहते जीव स्वरूप नो ज्ञान तो अति इंद्रिय अंतर्मुख ज्ञान थी स्थाई छे, बहिर्मुख इंद्रिय ज्ञान थी थतु नथी। अज्ञानी पोताना ज्ञान स्वभाव ने जानतो नथी, पण इंद्रियों ने ज ज्ञान नु साधन माने, ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। इंद्रियों से ही ज्ञान होता है, वही ज्ञान का साधन है, तो इंद्रियों के द्वारा ही जानने की कोशिश में लगा हुआ है। एटले इंद्रिय द्वारा जनाता जनाता ने जानने में आने वाले आ देहादी ने ज पोतानु स्वरूप माने छे। देहादिक तो जड़ छे ते कई आत्मा नथी, क्योंकि हमने देखा लक्षण उनके भिन्न है। आत्मा का लक्षण तो ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन आनंद विहीन वो आत्मा का लक्षण है, और ये तो देहादिक जड़ है, स्पर्श रस गंध वर्ण उनके गुण है। ते कई आत्मा नथी, आत्मा थी अत्यंत भिन्न छे। पण अज्ञानी ने इंद्रिय ज्ञान द्वारा देह थी जुदो आत्मा देखा तो नथी। देह दिखाई दे रहा है, आंखों से वो देह को देखेगा, परंतु आत्मा तो कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है और देगा भी नहीं। वो तो चैतन्य है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों ये तो पुद्गल जो है उसमें भी सूक्ष्म पुद्गल भी नहीं दिखता है इंद्रियों के द्वारा। वो तो स्थूल कुछ, और वो भी हमारे जैसे इंद्रियों की जैसे कैपेसिटी है, वे ही पुद्गल उसको दिखाई देंगे, सभी पुद्गल भी उसको नहीं दिखाई देंगे। तो कहते हैं कि उसको आत्मा दिखाई नहीं देता है, तेथी देहना अस्तित्व माज पोतानु अस्तित्व माने छे, क्योंकि अस्तित्व का तो उसके ख्याल आ रहा है। मैं हूँ ये एहसास हर जीव को है, अस्तित्व को तो जान रहा है, और अस्तित्व है मेरा तो कहाँ दिख रहा है, तो देह दिखाई दिया, तो देह ही मेरा अस्तित्व है मान लिया। तो देहना अस्तित्व माज पोतानु अस्तित्व माने छे, शरीर की क्रियाओं तो ते जाने के आत्मानुज कार्य होए, एम अज्ञानी ने भ्रमणा छे। देखो मैंने हाथ हिलाया कि नहीं है, मैंने हिलाया तो कैसे होता है, देखो मेरी इच्छा हुई ना तो मैंने हाथ हिलाया, मैंने उंगली हिलाई, क्योंकि अभी तो दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो इसके इच्छा होना और वहाँ उस शरीर अभी ऐसा बनता है, ऐसा बनता तो ऐसा उल्टा उल्टा ऐसा बेंड करो ये हाथ ऐसा, तो कहते वैसी योग्यता है, तो जो हो रहा है वो भी उसकी योग्यता से हो रहा है। और जब इसको वो पैरालिसिस हो जाए तो इच्छा है ना, तो क्यों नहीं हिलता। और कभी कभी इच्छा नहीं है फिर भी हिलता है कि नहीं, आपने देखा होगा किसी को तो ट्रेमर्स हो जाते हैं, पार्किंसन हो जाता है, तो हाथ पैर ऐसे कंप कहते थे, कंपवात कहते उसको, तो हिलते रहते उसको, वो बहुत परेशानी उससे, उसको उनके जो मूवमेंट से बहुत परेशानी है, थक जाता है वो कंट्रोल करना चाहते तो और हिलते हैं जोर से, तो उसकी तो याद की बात नहीं है। तो यही कहते हैं कि अज्ञानी को भ्रमणा है कि आत्मा का ही कार्य ऐसे, उसको भ्रमणा है। इंद्रियों थी हूँ जानू छू, एटले इंद्रियों तेज आत्मा छे एम तेने भ्रमणा छे। आ रीते अज्ञानी जीव पोताना देह ने ज आत्मा माने छे, तेमज परमा पण देह ने आत्मा माने छे। ये क्या कहना चाहते, अपना देह ने अभी जिस शरीर जिसमें जो देह है उस पर्याय का, उसको यह मैं हूँ मान लिया। अब सामने वाले को देखता है तो कैसा देख रहा है, उसके भी शरीर को देखता है, और वो शरीर ही वो सामने वाला जीव है मानता है, ख्याल में है ना। अपने को जो शरीर रूप मानता है तो सामने वाले को तो शरीर ही दिखाई देता है, वो आत्मा है पर उसका विश्वास नहीं, उसने को तो है ही नहीं, नॉलेज नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं है, तो ये शरीर मैं हूँ और ये वाला शरीर ये जीव है, ये दूसरा है, ऐसा मानता है। तो कहते कि तेमज परमापन देह ने आत्मा माने छे, देह थी भिन्न ज्ञानानंद स्वरूप पोताना आत्मा ने ते नहीं ओळखतो, તેથી બીજા આત્માને પણ તેવા સ્વરૂપે ઓળખતો નથી। કઈ મુનિરાજ કો દેખેગે તો વો દેહ હી મુનિ હૈ એસા માનતા હૈ, ઉસસે ભિન્ન આત્મા હૈ, ઉનકા અતિન્દ્રિય આનંદ હૈ, ઇતને જો અકષાય ભાવ હૈ, તીન કષાય ટુકડી કા વો નહીં માનતા। અરે મુનિ કી બાત છોડો, ભગવાન કો ભી દેખતા હૈ તો કિસ રૂપ દેખતા હૈ, जो मूर्ति है ना अभी, वो तो कहते हैं वो पत्थर, वो कहते कितना सफेद पत्थर है, कैसा काला पत्थर है, कैसे दाग वाला है, कैसे हसरी मूर्ति है, ऐसे ऐसे क्या जाके देख के आया वो बाहर, वही भगवान है मान लेता है। जैसा अपने को देखता है वैसे सामने को भगवान को भी उस रूप देखता है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आए ना, ये अरिहंत आदि को पहचानता ही नहीं है, अपने को शरीर रूप माना तो वो भी भगवान की मूर्ति, वो भी शरीर रूप ही उनको पहचान लिया, उनके आत्मिक गुणों का उसको कोई अंदाजा नहीं। देखो देहती भिन्न ज्ञानानंद स्वरूप पोताना आत्मा ने ते नथी ओळखतो, तेथी बीजा आत्मा ने पण तेवा स्वरूपे ओळखतो नथी, पोते पोताना आत्मज्ञान थी परांगमुख वर्ततो होवाती, यानी उसके विपरीत उल्टी दिशा में, अने इंद्रिय ज्ञान द्वारा एकली बहिर्मुख प्रवृत्ति करतो होवाती। एकली बहिर्मुख लिखा क्योंकि जो समय दृष्टि है उसके भी इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जानना तो चलेगा, इसकी वजह से मात्र एकली ओनली सिर्फ बहिर्मुख प्रवृत्ति करतो होवाती। अज्ञानी जीव देहादि ने ज आत्मा माने छे, देहती भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा ने ते जानतो नथी। जो अज्ञानी ने बहिरात्म पणु छे, पणु बताए अवस्था उसकी बहिरात्मा की है, ते बहिरात्म पणु कर्म वगैरह परना कारणे नथी। वो क्या मान लिया, ये दर्शन मोह ना, इसलिए वो बहिरात्म पना चल रहा है। देखिए देखो कर्म का कर्म ना कारणे नथी, क्योंकि वो जीव की अवस्था है, अशुद्ध है, विकार है, वो भी जीव के अपने अपराध से। जैसे समाधि स्वाधीन है, अभी असमाधि भाव चल रहा है, वो भी अपने स्वयं के अपने अपराध से कर रहा है, वो भी उसको स्वाधीनता से कर रहा है, कोई दूसरा आके उसको मिटा दे ये बात नहीं है, और कर्म ने उसको अटकाया है ये भी बात नहीं है। यही कहते कि बहिरात्मपणु कर्म वगैरह परना कारणे नथी, पण पोतेज पोताना आत्मा थी विमुख थईने, यानी उसने अपने ये उसी की भूले कि उसने अपने को नहीं जाना पहचाना, विमुख है ने परांगमुख अपोजिट। हाँ, इंद्रिय द्वारा बाह्य पदार्थों ने ज ग्रहण करे छे यानी जाने छे, तेथी ते देहादि ने ज आत्मा माने छे, माटे ते बहिरात्मा छे। ज्ञान ने अंतर्मुख करीने जाने तो, अभी अंतर्मुख ने जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बाहर जा रहा है, अब वो बाहर जाना रुक जाएगा तो ज्ञान ज्ञान को ही जानते रहेगा, ये कहना चाहते, इसी को कहेंगे ज्ञान ने अंतर्मुख करीने जाने तो ते अतीन्द्रिय ज्ञान वड़े देहादिति भिन्न चिदानंद स्वरूप आत्मानु स्व संवेदन थाय। वेदन यानी उसकी अनुभूति होती है। ये तो बहुत प्रश्न चलते हैं ना, ज्ञान में और वेदन में क्या अंतर है, अपने यहाँ बहुत बार वो बात चली थी। वेदन तो अपनी पर्याय के होता है, ज्ञान तो सबका होता है, स्व का भी होगा, पर का भी होगा, जीव का अपना होगा, पुद्गल का भी होगा, सबका होगा। वेदन तो अपने पर्याय का होता है, यहाँ क्या कहा स्व संवेदन, स्व संवेदन, और वो भी कैसा, देह से भिन्न चिदानंद स्वरूप आत्मा का स्व संवेदन, उसमें क्या होता है तो अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है, वेदन होता है। एटले बहिरात्मपणू टीने अंतरात्मपणू थाय, ये उसकी निशानी है कि उसने वो सही रूप से शुद्धात्मा का सन्मुखता से उसका स्वीकार किया, कहो उसको जाना, जानते ही वहां अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हो जाती है, अपनी भाषा में सम्य दर्शन हो जाता है, यहाँ की भाषा में अंतरात्मपणू प्रकट थाय। जे जीव इंद्रियों ने ज्ञान नु कारण माने, यानी इंद्रियों से ज्ञान होता है ऐसा जो मानता है, तेने इंद्रिय विषयों नाज पोषण नो अभिप्राय छे। क्या कहना चाहते हैं, इंद्रिय विषयों नाज पोषण नो अभिप्राय छे, यानी जो इंद्रियों के द्वारा ही जानने में आता है, एक तो वो इंद्रिया बलवान बनाने की कोशिश कर रहा है, एक बार फिर वो कोई बताए बादाम खाओ तो बुद्धि तेज हो जाएगी, ऐसा करो तो ये ऐसा हो जाएगा, तो वो सारी कोशिशें चलती है। इंद्रियों ना विषय अनुकूल हो तो इंद्रियों पुष्ट रहे, क्या कहा नहीं, इंद्रियों पुष्ट हो तो ज्ञान सारू थाय, एम अज्ञानी माने छे, तेथी ते इंद्रियों ने ज आत्मा माने छे। ને ઇન્દ્રિયો દ્વારા જ તેનું જ્ઞાન પ્રવર્તતું હોવાથી એકલા બાહ્ય વિષયોમાં જ તે વર્તે છે. વર્તે છે કહો, પ્રવર્તે છે, ઉસી કો જાનને મેં લગે હુએ. તેથી અંતરના ચૈતન્ય વિષયને જાણવા માટે તેનું જ્ઞાન નાપાસ છે. ફેલ છે. ચૈતન્યને જાણવાની પરીક્ષામાં તે નાપાસ થાય છે. ભલે બહુ બાર બાળા કોઈ બુદ્ધિમાન હો, કોઈ સાયન્ટિસ્ટ હો, ભલે મેટ્રિક વગેરે મોટી પરીક્ષામાં પહેલે નંબરે પાસ થાય, મેરિટ મેં આ ગયા, પણ જો ચૈતન્ય તત્વને ન જાણ્યું તો તેનું જ્ઞાન નાપાસ છે, મિથ્યા છે. હમ, જો અભી કુછ લૌકિક પઢાઈ કરકે બેઠે ઉસકો લગા લેના, અપની અપની ડિગ્રી ઉસમે ડાલ દેના, મેડિકલ મેં ગયે, MLLB હુએ, સબ કુછ લગા લેના, તો કહેતે વો તો જબ તક અપને આત્મા કો નહીં જાના તબ તક વો નાપાસ હૈ, મિથ્યા હૈ. અને અભણ હોય, લખતા વાંચતા આવડતું ન હોય, પણ જ્ઞાનને અંતર્મુખ કરીને ચૈતન્ય વિષયને જો જાણે છે તો તેનું જ્ઞાન પાસ છે, તેનું જ્ઞાન મોક્ષનું કારણ છે. જે જ્ઞાન દેખો, તિરંજ કો ભી હોતા ના, એ તો મનુષ્ય કી અપેક્ષા અભણ હૈ વો એસા કમ્પેર કરે, અભી તિરંજોં કો કોણ સા અક્ષર જ્ઞાન. જે જ્ઞાન મોક્ષનું કારણ થાય તે જ સાચી વિદ્યા છે. કે આત્મજ્ઞાન હિ જ્ઞાન હૈ, શેષ સભી અજ્ઞાન. એ સિવાય લૌકિક વિદ્યા ગમે તેટલી ભણે તો પણ આત્મવિદ્યામાં તો તે નાપાસ જ છે, તેનું ભણતર કુવિદ્યા જ છે. એ રૂકેંગે જાવાની કે જ્ઞાન તે સુજે લો કાલો સોવાણી મસ્તકનમ સદા દેત હો રૂમા.